चौथे अध्याय में भगवान ने अपना परिचय दिया। छठे अध्याय में ध्यान योग सिखाया और इस तरह से एक एक बात को, स्पिरिचुअल बात को, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को समझाते हुए 18 अध्याय का ज्ञान दिया और 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है, आई एम रेडी, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। ठीक इसी तरह अगर वर्तमान समय देखा जाए तो मनुष्य जीवन संघर्ष है, हर वक्त इंसान को लड़ना पड़ रहा है। कौन होगा जो कहता है मेरे जीवन में कोई संघर्ष नहीं है? कोई खुद से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई दूसरों के साथ लड़ रहा है, हर कोई लड़ रहा है। ये जीवन कुरुक्षेत्र बन गया है, जीवन के कई संघर्षों को तो पार कर दिया लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति हताश, निराश, उदास हो जाता है, नर्वस हो जाता है और कभी कभी वो भगवान से अपनी प्रार्थना में यही कहता है, हे प्रभु, ये संघर्ष कब तक लड़ते रहेंगे? क्या हमारे जीवन में सुख शांति होगी कि नहीं होगी? कहता है कि नहीं कहता। ऐसे समय के लिए ही आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, राजयोग का ज्ञान, यानी ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स जीवन के अंदर बहुत उपयोगी है, जो सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं और व्यक्ति को हर संघर्ष में विजयी बना सकता है। अगर ऐसे कॉन्फिडेंस अगर आ जाए और हर युद्ध में विजयी होने की अगर सीक्रेट प्राप्त हो जाए तो कौन आध्यात्मिकता को नहीं अपनाएगा? कहते हैं ना, आध्यात्मिकता की जरूरत क्या है? लाइफ में जब स्ट्रेस, नर्वसनेस, डिप्रेशन जैसी स्थिति हो उसमें से भी बाहर निकालने की क्षमता योग में है, आध्यात्मिकता में है। तो वो योग क्या है? जीवन माना दो एस्पेक्ट्स, एक तो आत्मा, दूसरा शरीर। ये दो जहां मिलते हैं वहां से जीवन आरंभ होता है। जब आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया और जीवन आरंभ हुआ। अकेली आत्मा है तो जीवन ये नहीं कहेंगे, अकेला शरीर है तो जीवन नहीं कहें। जीवन माना ही जहां शरीर और आत्मा का मिलन होता है। शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना क्या? शरीर माना 5 तत्व, और इसीलिए ये शरीर को जीने के लिए वही 5 तत्व चाहिए। आज ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई गैस नहीं चाहिए, नहीं चलेगा, ऑक्सीजन ही चाहिए। ठीक इसी तरह पानी चाहिए क्योंकि ये शरीर के अंदर 60-70% पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो गया कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। एक्सेस नहीं पीते कि कल के लिए चलेगा, शरीर रखेगा भी नहीं, फेंक देंगे बाहर। तो इसीलिए कहा कि ये पांचों तत्व शरीर को जीने के लिए आवश्यक है। एक भी तत्व कम हो जाए तो सफोकेट होने लगते। और कुदरत ने इसीलिए ये पांचों तत्व प्राणी मात्र के लिए दे दिया एक समान, कोई भेदभाव नहीं किया कि भारत वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगा, दूसरे देश वालों को अलग क्वालिटी की मिलेगी, या अमीरों को अलग मिलेगा, गरीबों को अलग मिलेगा, या हिंदू धर्म वालों को अलग मिलेगा, दूसरे धर्म वालों को अलग मिलेगा, नहीं नहीं, कोई भेदभाव नहीं। पांचों तत्व सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए एक समान थे। ठीक इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? क्या चाहिए? और आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? या सोचते हैं कि आत्मा निर्लेप है, उसको कुछ नहीं चाहिए? हर आत्मा को भी जीवन जीने के लिए सात बातें चाहिए, शरीर को पांच चाहिए, आत्मा को सात गुण चाहिए। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतोगुणी है, द एसेंस ऑफ सेवन वैल्यूज। कौन से गुण चाहिए? जो यूनिवर्सल हो, हर जाति, हर धर्म, हर देश, हर भाषा के लोगों को, हर स्तर के लोगों को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर एक को चाहिए। उसमें से सबसे पहला गुण है ज्ञान। आज एक छोटा बच्चा जब होता है और वो रो रहा है और उसके सामने कोई आवाज करने वाला खिलौना रख, चुप हो जाता है, ये आवाज कहां से आ रही है? जिज्ञासा। थोड़ा बड़ा होता है और रोता है, उसके सामने वो आवाज करने वाला खिलौना रख दो, उसको तोड़ने का प्रयास करता है ये जानने के लिए ये आवाज कहां से निकल रही है। और तोड़ करके अगर आवाज बंद हो गई, बड़ा खुश होता है, मैंने बंद कर दिया इसका आवाज। तो जिज्ञासा उस उम्र से आरंभ हो जाती है। आज एक छोटा बच्चा अपनी माँ को कितने सवाल करता है, ये क्यों ऐसा, ऐसा क्यों? कभी कभी माँ के पास जवाब नहीं होता है तो कहते चुप कर, बंद बहुत हो गया। इतनी जिज्ञासा है कि मुझे जानना है। तो सबसे पहला गुण जो है ज्ञान प्राप्त करना। और इसीलिए बचपन से हमें ये प्रार्थना सिखाई गई, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से हमें अमरत्व की ओर ले चलो। ज्ञान का कंपैरिजन प्रकाश और अमरत्व के साथ किया गया, क्योंकि व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद भी वो ज्ञान के संस्कार नहीं छूटते हैं, वो ज्ञान का संस्कार लेकर जाता है, बाकी सब कुछ यहाँ छूट जाता है। छोटे बच्चे दुनिया के अंदर भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन जब करते हैं, ये स्पष्ट होता है, चाहे वो गूगल बॉय हो या ऐसे कई हो जो छोटी एज में ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं कि कैसे ज्ञान अमरत्व है। ज्ञान समाप्त नहीं होता है और वो ज्ञान की जिज्ञासा उस व्यक्ति को एक दिशा देता है जीवन के लिए। लेकिन आज की दुनिया में ज्ञान के बदले अज्ञान बढ़ता गया। कैसे कैसे अज्ञान बढ़ता गया? बचपन से प्रार्थना तो ये सिखाई स्कूलों में, लेकिन विद्या से विनम्रता आती है, विनय आता है। लेकिन आज मनुष्य जीवन में जितना उसने इन्फॉर्मेशन को हासिल किया, ज्ञान नहीं हासिल किया, इन्फॉर्मेशन हासिल किया, और जितनी इन्फॉर्मेशन हासिल किया अज्ञान ही बढ़ता गया। कैसे? ईगो बढ़ता गया। और यही कहा जाता है, ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन ह्यूमन लाइफ। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया, अज्ञान की ओर ही इंसान बढ़ता गया। विनम्रता कहाँ आती है जीवन में? किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर लाइब्रेरी से सारी ज्ञान की पुस्तकों को इकट्ठा किया जाए, इन्फॉर्मेशन की सारी पुस्तकों को इकट्ठा किया जाए, एनसाइक्लोपीडियाज को, और उसको पाइल अप कर दिया जाए रोड पर और उसकी होलिका जलाई जाए, तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज ग्रेटर देन द लाइट। और सही में आज वही हो गया कि मनुष्य जीवन में जितना इन्फॉर्मेशन हासिल किया, अहंकार की गर्मी जरूर चढ़ गई, व्यवहार में रोशनी नहीं आई है। आज व्यक्ति को अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है वो नहीं आया, वो रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, हीट बढ़ गई है, अहंकार जरूर बढ़ गया। इसीलिए कहा कि जब अज्ञान की ओर ही आगे बढ़ता गया तो ज्ञान कहाँ है? दूसरा गुण चाहिए, पवित्रता, प्योरिटी, शुद्धि। जिस तरह से बाह्य शुद्धि को अपनाते हैं, आत्मा की शुद्धि भी अति आवश्यक है, जिसके लिए कई लोग गंगा स्नान करने जाते हैं आत्मशुद्धि। क्या गंगा स्नान कर देने से आत्मशुद्धि हो जाती है? जो पानी आत्मा को स्पर्श भी नहीं करता है तो आत्मशुद्धि कहां से हुई? और भगवान के मंदिर में जाकर के यही प्रार्थना करते रहे, मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे, प्रभु तू साफ कर देना, कि मैं तो मैला हो रहा हूं, तू साफ करते रहना। भगवान भी पूछता है कब तक साफ करूं, कब तक मैले होते रहेंगे? तुम भी तो कुछ पुरुषार्थ करो स्वच्छ होने का। तो गंगा स्नान कर लिया, और आज के इंसान के पास तो टाइम ही नहीं है आत्मशुद्धि के लिए, तो दिनों दिन अशुद्धि अंदर बढ़ती जा रही है। कई बार कई लोगों को देखो, स्प्लिट पर्सनालिटी होते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। बाहर से बड़ी मीठी बातें करेंगे लेकिन अंदर में मन बहुत मैला होता है। जब वो दुनिया में लोगों के सन्मुख आते हैं इस पर्सनालिटी को लेकर के, इस व्यक्तित्व को लेकर के, कुछ समय के बाद जैसे ही लोगों को पता चलता है दूर होने लगते हैं। पूछो भाई क्या हुआ, तुम्हारी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। कहेंगे बाद में पता चला इसके अंदर कुछ और बाहर कुछ था। ही वॉज नॉट प्योर एट हिज हार्ट, उसका दिल साफ नहीं था। सो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ हिम, सो वेर आर वी कंफर्टेबल? जहां शुद्धि हो। तो ज्ञान और ज्ञान के साथ शुद्धि चाहिए, लेकिन आज ज्ञान के बदले अहंकार और अहंकार के साथ अशुद्धियां जीवन में आ गई, और उस कारण से तीसरा गुण प्रेम। आज रिश्तों में प्रेम नहीं है, क्योंकि जहां अहंकार हो अशुद्धि हो तो प्रेम कहां से पनप क्या? प्रेम नहीं पनप सकता है। आज जहां ज्ञान यानी अंडरस्टैंडिंग हो, शुद्धि हो, वहां प्रेम पनप सकता है। और जहां प्रेम ही नहीं है तो रिश्तों में क्या हो रहा है? कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितने परिवार टूट रहे हैं, कितने लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और तभी किसी ने कहा ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन अफसोस आज दुनिया में मनुष्य ढाई अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ सका, और प्रेम की जगह क्या आ गया? स्वार्थ। और जहां स्वार्थ है तो नफरत तो होगी, तो प्रेम कहां से आ सकता है? आज एक बच्चे को भी आप स्वार्थवश बुला करके चॉकलेट देना चालू करो, बड़ी अच्छी बातें करना चालू करो, तो बच्चा भी क्या कहेगा? मतलब की बात करो ना, क्या करवाना है, क्या करवाना चाहते हैं? वो भी समझ जाता है कि जरूर इनको कोई मतलब होगा, कोई स्वार्थ होगा, तब आज बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और मुझे चॉकलेट का या आइसक्रीम का या जो उसकी फेवरेट चीज है उसका लालच दे रहे हैं। समझ जाता है कि नहीं समझता? अगर बच्चा समझ सकता है तो बड़ा तो जरूर समझ ही जाता है। भावार्थ ये कि आज प्रेम हरेक को चाहिए, एक बच्चे को भी चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करता है उनको भी अच्छा लगता है। ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों ने तो सारा जीवन बहुत प्यार पाया इसलिए बुढ़ापे में अभी प्यार नहीं मिला तो चलेगा? चलेगा। हर एक को प्यार चाहिए, पशुओं को भी चाहिए, तो प्रकृति को भी चाहिए। आज जहां प्रेम के वाइब्रेशन हो वहां प्रकृति भी कितनी सुंदर खिलती है। कितना एक अलग एटमॉस्फियर बन जाता है। और जहां स्वार्थ और नफरत के अलावा और कुछ ना हो वहां का वातावरण कैसा होता है? भय वाला होता है। तो जहां अंडरस्टैंडिंग है, शुद्धि है, वहां प्रेम है। और जहां ये तीनों है वहां चौथा गुण शांति है। आज हर इंसान को शांति चाहिए, हर इंसान को शांति चाहिए। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे स्ट्रेस चलेगा, मुझे अशांति चलेगी, नहीं, शांति चाहिए। मेंटली रिलैक्स्ड फील करना चाहता, हर कर्म करते हुए मन शांत रहे, ये शांति चाहिए। वातावरण की शांति नहीं चाहिए, व्यक्ति को जब बहुत स्ट्रेस हो जाता है तो हाँ, थोड़े दिन के लिए पहाड़ों पर चला जाता है या समुद्र किनारे चला जाता है रिलैक्स फील करने के लिए, लेकिन हमेशा वहां नहीं रहता है, वापस आता है। इतना एक ब्रेक की आवश्यकता थी, वो ले लिया, लेकिन व्यक्ति को शांति रिलैक्सेशन कौन सी चाहिए? यार, कर्म करते मेरा मन शांत रहे, ये शांति चाहिए। और जहां ये चारों बातें हैं वहां जीवन में सच्चा सुख है। आज सुख कहां है? सुख सुविधा के सारे साधन है, लेकिन डनलप के गद्दे पर सोने पर भी नींद नहीं है। दवाइयां लेनी पड़ती है उसको नींद के लिए भी, फिर भी नींद नहीं आती। एसी में बैठने के बाद भी पसीना छूटता है। तो सुख सुविधा के साधन है, लेकिन मनस्थिति सुख वाली नहीं है, क्योंकि शांति नहीं है, क्योंकि प्रेम नहीं है। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है। और जहां ये पांचों बातें हैं वहां छठा गुण है आनंद। कहा जाता है आत्मा का स्वरूप है सत चित आनंद स्वरूप। आत्मा का सत्य स्वरूप आनंद है, उसकी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। खुशी चाहिए, हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन आज आनंद तो छोड़ो, खुशी भी नहीं है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी उसको लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है, घर में हंस नहीं पाता है। घर में अगर मुस्कुरा दिया तो सबसे पहले घर वाले पूछते हैं क्या बात है, आज इतना मुस्कुरा क्यों रहे। और अगर अपनी खुशी डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं और कह दिया बस ऐसे, क्यों मुस्कुरा नहीं सकते क्या, तो क्या कहते घर वाले, आर यू ओके, आप ठीक हो? हाउ कैन यू स्माइल विदाउट अ रीजन? माना खुश होने के लिए भी एक वजह चाहिए, अगर वजह नहीं है तो आप मुस्कुरा नहीं सकते हो, ये हालत है। इसीलिए दुनिया में व्यक्ति अगर कार्य क्षेत्र पर जाता है टाइट होके जाता है, अगर मुस्कुराता हुआ चला जाए तो सारा स्टाफ एक दूसरे को देख करके इशारा करते क्या बात है, आज तो सर बड़े खुश लग रहे हैं, जो काम करवाना है करवा लो, लोग एडवांटेज लेना चाहते हैं। इसलिए भी बेचारा मुस्कुरा नहीं सकता, टाइट होके चलता है। जीवन की क्वालिटी क्या बना दी हमने कि आज इंसान की चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है, खुशी से है, और खुश रहना चाहते हुए भी खुश हो नहीं पा रहा है। क्या जीवन की क्वालिटी बना दिया? और जहां खुश नहीं हो सकते हैं फिर व्यक्ति क्या कहता है, जिंदा लाश है, जी रहे हैं लेकिन जिंदा लाश है, चल रहे हैं, खुशी कहां है? ये आज की हालत है। और ये सारी चीजें कहां से मिलेगी? आध्यात्मिक ज्ञान से ही प्राप्त होगी, क्योंकि ज्ञान जड़ में है। जब तक वो आध्यात्मिक ज्ञान न आए, शुद्धि नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता है, शांति नहीं हो सकती है, सुख नहीं हो सकता है, आनंद नहीं है। ये सारी वहां से आरंभ होती है। इसलिए कहा कि आज उस जड़ में ही खाली इन्फॉर्मेशन रह गया, ज्ञान कहाँ है? और इन्फॉर्मेशन से क्या निकला? अहंकार, स्वार्थ, अशुद्धि, नफरत, यही तो निकला। और जब ये निकलने लगा, अशुद्धियां निकलती रही, प्रेम के बदले पॉजिटिवनेस, यानी मेरा है, वहां से दुख आरंभ हो जाता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और दुखी हो गया इंसान तो खुश कहां से रह सकता है? इसलिए ज्ञान चाहिए। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के ये कोई प्राप्ति नहीं है। और सातवां गुण वो है शक्ति। इंसान ने हमेशा भगवान के मंदिर में जाकर के यही मांग की, हे प्रभु शक्ति देना। कौन सी शक्ति चाहिए? किसी से लड़ाई करने की नहीं, आत्मशक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए। आज विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस नहीं रहा। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है एग्जाम देने के लिए, पूरी तैयारी के साथ जाता है, और वहां जाने के बाद एक एग्जामिनेशन पेपर को देखकर नर्वस हो जाता है, जो कुछ तैयारी करके आया है ब्लैंक हो जाता है, कुछ लिख नहीं पाता है, और आ जाता है, इतना डर गया। सोचने की बात है कि एक पेपर एग्जाम को दे नहीं पाया तो जीवन की वास्तविक परीक्षाओं को क्या दे पाएगा? अभी तो जीवन आरंभ नहीं हुआ, संघर्षों का सामना नहीं किया, उसके पहले ही डर गया। यानी कितनी आत्मा कमजोर हो गई है। और उसके बावजूद भी जब व्यक्ति कहे आध्यात्मिकता के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है? दिस इज द हाइट्स ऑफ इग्नोरेंस। भावार्थ ये कि ये सात गुण ये आत्मा की बैटरी है, और आज के युग में ये बैटरी ही डिस्चार्ज है। अब बैटरी डिस्चार्ज हो तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी? कहां से खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह कहां से आएगा? तो अर्जुन जैसी ही हालत हो जाती है, नर्वस हो गया, डर गया। दुनिया में भी कहा गया कोरोना आया, और कोरोना बीमारी से बहुत कम लोग मरे, डर से ज्यादा मरे, भय से ज्यादा मरे। और भय सूचक है कि आत्मा इतनी कमजोर है, उसमें ताकत नहीं है। और कई बुजुर्ग 90 साल के, कोरोना हो गया वो वापस ठीक होकर के आ गए, और यंग व्यक्ति चला गया। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? 90 साल का बुजुर्ग वापस आ जाता है और यंग व्यक्ति चला गया। भावार्थ यही कि जो दुनिया में कहा जाता है डर गया सो मर गया, सचमुच में प्रैक्टिकल दिखाई दिया, डर गया सो मर गया। तो इसीलिए आवश्यकता है कि अब अपनी बैटरी को चार्ज करना है, ये सातों गुणों से अपनी बैटरी को चार्ज करना जरूरी है। नहीं तो कोरोना एक चीज आई, अभी तो बहुत कुछ आना है, अभी तो बहुत कुछ आना है। और अभी भी अगर हम ये कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का, तो क्या होगा? आज एक मोबाइल को भी रोज चार्ज करना पड़ता है, तब दूसरे दिन काम आता है। अगर एक दिन भी चार्ज करना भूल गए तो सारा दिन इतना चिड़चिड़ापन आता रहेगा, अरे इतना अर्जेंट काम है और फोन भी डिस्चार्ज हो गए, फोन भी डिस्चार्ज। इसलिए लोगों ने पावर बैंक लेकर के चलना चालू किया, पावर बैंक है तो कहीं पर भी चार्ज तो कर लेंगे। लेकिन आत्मा के लिए कोई पावर बैंक है कि भाई कहीं से भी चार्ज करे? नहीं है हमारे पास। है तो सही पावर बैंक भाई, यूट्यूब कहीं पर भी बैठ करके यूट्यूब पर सुन सकते हैं, आध्यात्मिकता को लेकर के कहीं अच्छी अच्छी बातें सुन सकते हैं। लेकिन वो भी टाइम नहीं है लोगों के पास, इसीलिए कहा जहां आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ेगा ना, आत्मा सफोकेट हो रही है। जिस तरह शरीर को पांच तत्व न मिलने से या एक तत्व भी न मिलने से सफोकेट हो जाते हैं, आत्मा को सातों गुण से बैटरी डिस्चार्ज है तो कितना फ्रस्ट्रेशन आता है, यानी आत्मा सफोकेट हो रही है। तो आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है, कैसे करें? हमने अनजानेपन में भी चार्ज करने का प्रयत्न किया, कई तरीके अपनाए। कौन से तरीके अपनाए? पहला तरीका अपनाया संबंधों में अपेक्षा, ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, ये व्यक्ति मुझे अंडरस्टैंड करे, ये व्यक्ति मुझे शांति दे, व्यक्तियों से अपेक्षा रखी। मिल गया? नहीं मिला, क्यों? अरे जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है वैसे उसकी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कैसे करेगी बताओ? तो मनुष्य से अपेक्षा रखने से चार्ज होगा? नहीं हो सकता है। फिर क्या कहते हैं? थोड़ा सा प्यार ही तो चाहा था, कोई धन दौलत थोड़ी चाहिए थी, इतना भी नहीं दे सके। थोड़ा सा सुख ही तो चाहा था, और कोई चीज थोड़ी चाहिए थी, वो भी नहीं दे सके। अरे लेकिन हो तब तो दे ना, वो खुद ही तलाश में है। और इसीलिए दोनों एक दूसरे से अपेक्षा रख रहे हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, क्लैश होते 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 ब्रेकडाउन, है ना? संबंध ही टूट गया। फिर ये मुझे कुछ नहीं दे सकता, उसके पास कुछ है ही नहीं, ये क्या देगा? एक मैरिज किया, दूसरा मैरिज किया, तीसरा मैरिज किया, एक भाई मुझे मिला बॉम्बे में, उसने मुझे कहा कि मैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहां मैं गलत हुआ कि तीन तीन बार शादी करने के बाद भी आज अकेला हूं, कोई नहीं रहना चाहता मेरे साथ, कोई बच्चे भी मेरे साथ रहना नहीं चाहते, तीन बार शादी करने के बाद भी अकेला, प्रॉब्लम कहाँ है? अपेक्षा है। भावार्थ यही कि मनुष्य से अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होती है, और हम यही गलती बार बार कर रहे हैं, हम एक दूसरे से अपेक्षा ही रखते रहे, इसलिए चार्ज नहीं हुए और ही फ्रस्ट्रेशन आ करके डिस्चार्ज भी होते गए। दूसरा तरीका अपनाया, कर्म करो। व्यक्ति कर्म करेगा तो उसमें से उसको मिलेगा। आज इंसान धन कमाता है किस लिए? धन चाहिए? किस लिए चाहिए? कहते धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे। करोड़पति से पूछ लो, सुख शांति आ गई, क्या कहेंगे? भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। क्योंकि धन कोई माध्यम नहीं आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। सबसे बड़ी गलतफहमी है व्यक्ति की कि धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे। नहीं, दूसरा, कई लोगों ने शादी पार्टीज में जाना आरंभ किया। क्यों? कहते आनंद के लिए, खुशी के लिए। जब पूछो खुशी मिली? क्योंकि उस आनंद की खोज में इतने विकृत रास्ते पर चले गए, नहीं ड्रगिस्ट हो गए, उसमें जीवन को तबाह कर दिया, आनंद नहीं मिला। कई लोगों ने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन किया, किस लिए? सेवा करनी चाहिए, सेवा करने से खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। पूछो मिला? क्या कहते हैं? अरे बहुत पॉलिटिक्स है, कहाँ आनंद। व्यक्ति सोशल गैदरिंग में जाने लगा, क्यों? भाई सबके साथ हमारा प्यार भरा रिश्ता बनेगा, इसलिए। पूछो बना? क्या कहते हैं? अरे एक को खुश किया, दो नाराज हो गए, बना कहाँ, बिगड़ता ही जा रहा है। तो अनेक तरीके अपनाए व्यक्ति ने कि कैसे भी करके बैटरी चार्ज हो जाए, लेकिन चार्ज होने के बजाय डिस्चार्ज ही होती गई। और इसलिए अब डिप्रेशन के शिकार बढ़ते जा रहे हैं, हताश निराश उदास हो गया इंसान, जीवन जीने की इच्छा ही खत्म होती जा रही है। ऐसा जीवन जीने से तो मर जाना अच्छा है, ये सोचता है। तीसरा तरीका अपनाया, कर्म करने पर भी नहीं मिला तो तीसरा तरीका अपनाया, भगवान को याद करो, वही स्रोत है, वहां से मिल जाएगा। भगवान से ये सात बातें ही मांगते रहे, ज्ञान से अज्ञान की ओर ले चलो, मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे, फिर कहा तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, एक बूंद भी मिल जाएंगी ना, काफी है जीवन जीने के लिए। चौथा कहा हमको मन की शांति दो, हे प्रभु तू दुख हरता सुख करता है, याद दिलाया उसको तू दुख हरता सुख करता है, मेरा दुख हर और सुख दे, तू सुखदेव है मुझे सुख दे। फिर कहा हे प्रभु तू सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद दे। और लास्ट में धमकी दे दिया, इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो। माना अगर शक्ति नहीं मिली तो विश्वास कम हो जाएगा, देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। मेरा विश्वास खत्म हो गया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, ये हालत है हमारी। भगवान को भी धमकी दे रहे हैं। और ऐसी प्रार्थना करने से मिल गया क्या? कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाले ने फेंका और हमने रिसीव कर लिया। इसलिए स्रोत वही है, वहीं से मिलेगा, लेकिन मांगना ये कोई तरीका नहीं है। इसलिए कहा जाता बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख, भीख भी नहीं मिलती है। बिन मांगे मोती जोड़ो अपने आप, कनेक्ट करो, जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे मिलेगा नहीं, जोड़ना पड़ेगा, यही सही तरीका है। आज हम आपको दो सिंपल तरीके बताएंगे बैटरी चार्ज करने के, ठीक है? रोज लेकिन करना ये विधि से, क्योंकि बहुत जरूरी है। कई लोगों की अपेक्षाएं आपसे हैं, आप कम से कम अपनी बैटरी चार्ज करो, कम से कम उनकी अपेक्षा तो पूरी हो सकती है, तो रिश्ते तो बच जाएंगे, है ना। अच्छा, पहला तरीका है बैटरी चार्ज करने का। एक गाड़ी की बैटरी को चार्ज रखना है तो क्या करना पड़ेगा? गाड़ी को चलाते रहो, जितनी गाड़ी चलती रहेगी बैटरी चार्ज रहेगी। गाड़ी को ला करके गैराज में रख दो, साल दो साल तक उसको यूज ही नहीं करो, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक इसी तरह आत्मा के सातों गुण जो है ना, उसको चलाना पड़ेगा जीवन में। लेट द एनर्जी फ्लो। हमने क्या किया? बांटना बंद कर दिया, देना बंद कर दिया, अपेक्षाएं रखना चालू कर दिया, इसलिए नहीं मिला, उल्टा कर दिया। देने से बढ़ता है, इसलिए कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्यार बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। बांटना बंद कर दिया। अब पहला तरीका है बांटना आरंभ करो। जितना आप बांटना शुरू करेंगे ना, आपकी बैटरी चार्ज रहेगी, धीरे 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 भरपूर हो जाएगी। बांटो, कोई चीज वस्तु बांटने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को सहयोग चाहिए सहयोग दो, किसी को सम्मान चाहिए सम्मान दो, जो चाहिए दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और ये चीज जैसे जैसे आप बांटने लगेंगे, आपके अंदर खुशी बढ़ती जाएगी। इसीलिए आप देखो, हर चीज दे रही है, प्रकृति के पांचों तत्व दे रहे हैं, पेड़ पौधे सब दे रहे हैं, वृक्ष दे रहे हैं। बहुत सुंदर वो गीत लिखा है किसी ने, नदी न पिए अपना जल, पेड़ न खाए अपना फल, दे रहे हैं वो सब, सब कुछ दूसरों के लिए, और हम खुश हो रहे हैं प्राप्त करते हुए। लेकिन हम कभी कभी भूल जाते कि हमें भी कुछ रिटर्न में देना होगा, और हम लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। इसलिए ये प्रकृति के पांचों तत्व देवता हो गए और हम लेवता हो गए, है ना। ले रहे हैं तो लेने वाले को क्या कहेंगे? लेवता कहेंगे। देने वाले को क्या कहेंगे? देवता कहेंगे। ये सब देवता हो गए, सूर्य देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये सब देवता हो गए, और हम कौन हो गए? लेवता हो गए। देवता बनना किसको चाहिए? हमें बनना चाहिए। इंसान जीवन जीवित प्राणी है, उसको देना चाहिए, उसके बदले हम लेवता की कैटेगरी में आ गए, उल्टा हो गए। देना आरंभ करो, देखो खुशी मिलेगी। देने में खुशी है, लेने में खुशी है, किसमें खुशी है? हाँ, कोई कोई अगर अच्छी कोई मौके पर गिफ्ट दे दे तो खुशी होती है, लेकिन देने वाले को डबल खुशी होती है। दे करके देखो, देवता बनो, चीज वस्तु नहीं, चीज वस्तु नहीं, वो तो एक खरीदार हो गया, खरीदार नहीं बनो, व्यापार नहीं करो, देना शुरू करो। एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है यहाँ पर। एक बार एक राजा था, राजा के पास बहुत सारी गिफ्ट्स इकट्ठी हो गई, जगह जगह जाता था, अभी उसको तो अमूल्य उपहार मिलता था। अब इतनी सारी गिफ्ट हो गई कि महल में रखने की जगह नहीं थी। उसने सोचा, ये सारी गिफ्ट को क्या करूं मैं, सोचा प्रजा में बांट देता हूं, वो भी याद रखेंगे हमें कि हमारे राजा ने ये गिफ्ट दिया था। तो एक दिन उसने ऐलान कर दिया कि राजा के पास इतने अमूल्य गिफ्ट्स हैं और वो बांटना चाहते हैं। तो वही संडे के दिन एक दिन मुकर्रर किया कि जिसको भी वो गिफ्ट्स चाहिए वो राजमहल के बाहर लाइन लगा दे, राजा आकर के सबको गिफ्ट बांटे, सारी गिफ्ट्स बाहर ला करके रख दिया। और देखा राजा जब आए तो देखा बड़ी लंबी लाइन है, तो सारे लोग गिफ्ट लेने के लिए पहुंच गए। अब राजा ने जैसे ऐलान किया था उसने देना चालू किया। अब देगा किसी को, जब गिफ्ट देता है तो सामने वाला क्या कहेगा, भगवान आपको लंबी आयु दे, सदा स्वस्थ रखे, दुआएं देगा ना वो। तो जब उसको दुआएं मिलती थी तो उसके चेहरे पर एक ऐसी प्रसन्नता थी, इतनी आत्मसंतुष्टि थी और इतनी खुशी उसके चेहरे से झलकती थी। तो उस लाइन में एक फकीर था। फकीर ने जब देखा कि मैं इतना समय से साधना करता रहा, सब कुछ त्याग कर, तो भी मुझे ये खुशी का अनुभव नहीं जो आज राजा के चेहरे पर है, प्रसन्नता का भाव, एक आत्मसंतुष्टि, एक खुशी ऐसी उसके अंदर झलक रही है, जो ये कैसे अनुभव करूं, मैं करना चाहता हूं कि आज मैं भी अपने जीवन में ये चीज का अनुभव करना चाहता हूं। लेकिन फकीर ने सोचा मेरे पास तो कुछ है ही, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूं, जो मुझे भी ये दुआएं मिले, ये खुशी मिले, ये आनंद मिले, आत्मसंतुष्टि मिले। सोचते सोचते उसका टर्न आ गया, उसका नंबर आ गया। तो उसने पीछे वाले को कहा आप आगे जाओ, अब किसी को आगे भेजेंगे तो खुशी तो होगी, क्योंकि आज हर कोई आगे जाने के लिए ही तो उस दौड़ में ही तो लगे हुए हैं। तो उसने पीछे वाले को कहा आगे जाओ, वो खुश हो गया कि पागल व्यक्ति ये देखो आगे कर रहा है हमें। लेकिन जैसे ही उसको आगे किया तो वो भी उसको दुआ देता गया, भगवान तुझे सदा खुश रखे। अरे उसको महसूस हुआ यही तो सीक्रेट है देने में। उसने दूसरे को कहा तू भी आगे जा, तीसरे को कहा तू भी आगे जा, देना चालू कर दिया उसने। हर कोई जाता था खुश होकर के, उसको दुआ देते हुए जाता था, उसको भी वो प्रसन्नता का अनुभव हुआ। जब सारे लोगों को बांट दिया तो दूसरे दिन राजा ने कहा जरा नगर में पता तो लगाओ कि लोगों के अंदर क्या बातचीत हो रही है, क्या वो प्रसन्न है ये चीजें प्राप्त करके। तो उनके मंत्रीगणों ने गुप्त वेश धारण करके जब नगर में घूमे तो पता लगाया, सब कोई प्रसन्न था। तो लोग चर्चा कर रहे थे कि राजा ने तो सचमुच इतनी अमूल्य गिफ्ट्स बांटी, दिल ही खुश हो गया ये प्राप्त करके। तो उसमें से लोग कहने लगे अरे एक फकीर भी था जो खुद तो कुछ लेता नहीं था, दूसरे को आगे कर रहा था, पर भगवान उसको भी लंबी उम्र दे, सबको आगे किया उसने, आगे जाने दिया, खुद नहीं उतर के, और उसने लिया भी नहीं कुछ। तो उसकी भी चर्चा हो रही थी। तो मंत्री ने आकर के राजा को बताया कि लोग तो बड़े प्रसन्न हैं आपसे चीज प्राप्त करके, लेकिन चर्चा ये भी है कि एक फकीर भी था उस लाइन में जो अपना टर्न दूसरों को देते जा रहा था और उसने कुछ लिया भी नहीं। जब राजा ने ये बात सुनी उसको बड़ा दुख हो गया, मेरी कंपैरिजन उस फकीर के साथ, फकीर की भी इतनी महिमा, मैंने इतने अमूल्य गिफ्ट, उसने खाली टर्न दिया अपना, तो भी उसकी चर्चा हो रही। तो राजा ने कहा वो फकीर कौन है, तो कहा पता नहीं वो तो कहां चला गया, दिखाई नहीं दे रहा। राजा ने फिर ऐलान किया आज भी गिफ्ट्स बांटेंगे, फिर लाइन लग गई, फिर वो फकीर भी आ गया, फिर वो अपना टर्न देने लगा दूसरों को। राजा ने बांटना बंद किया, कहा इधर आ, तेरे को जो चाहिए ना ले ले और जा यहां से, तू खाली एक टर्न बांट रहा है और तेरी चर्चा मेरे बराबर हो रही है, ये मेरे से सहन नहीं हो रहा है। यह हालत है आज की दुनिया। देना शुरू करो, देखो कितनी खुशी मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद का अनुभव होता है और बैटरी चार्ज होने लगती है। सही है तरीका? तो कल से क्या करेंगे? देना या लेना? देना। ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य है मानव को देव बनाना, और देखो देव बनाना एक घंटे का काम है, एक घंटे के अंदर आप सभी देव बनने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव ने कहा है, मानव को देव किए करत न लागी वार, मनुष्य को देव बनाने में देर नहीं लगती है। सही समझ जैसे ही इसको प्राप्त होती है, वो देव बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कहा कुछ स्थूल में देने की भी जरूरत नहीं, आप सूक्ष्म देना चालू करो। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को खुशी चाहिए, किसी को जो चाहिए वो देव ना, क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई सम्मान चाहता है तो दे दो ना सम्मान, कौन सा खर्चा लगता है? मुख से दो शब्द ही तो बोलना है, लेकिन उसी से अगर उसको खुशी मिलती है तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए? आपका गृहस्थ जीवन सुखी हो जाए तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए? यही तरीका है कि गृहस्थ जीवन गृहस्थ जंजाल से गृहस्थ आश्रम बन जाए। आश्रम माना जा सुख शांति है, यही पहला तरीका है, और अपनी बैटरी भी चार्ज करने का। दूसरा तरीका है स्रोत के साथ अपने आप को जोड़ो, परमात्मा से मन बुद्धि को जोड़ो। मन बुद्धि ये दो पिन है, ये दो पिन को जोड़ो। जितना मन और बुद्धि की एकाग्रता उस परमात्मा में हम करेंगे, तो परमात्मा जो सर्व शक्तियों का स्रोत है, सर्व गुणों का स्रोत है, उनसे स्वतः वो ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी। मांगने की जरूरत नहीं है भगवान से। आप बाहर धूप में खड़े रहो, सूर्य से मांगते नहीं हो कि सूर्य तेरी गर्माइश मुझे दे। समुद्र के पास खड़े रहकर समुद्र से मांगते नहीं है कि समुद्र तेरी शीतल हवा मुझे दे। आप उसके संपर्क में आओ, कांटेक्ट में आओ, और आपको वो ऊर्जा मिलने लगेगी। धूप में खड़े रहो, गर्माइश मिलने लगेगी। रोम रोम आपका 5 मिनट के अंदर गर्माइश से भर जाएगा, एक ऊर्जा ऐसी मिल जाएगी। ठीक इसी तरह स्वयं को भी उस ज्ञान सूर्य के साथ जोड़ना पड़ता है, कनेक्शन में आना पड़ता है, और ध्यान यही माध्यम है। ध्यान लगाओ अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करो और उस ऊर्जा को आने। ध्यान लगाओ। आज बच्चों को कहते हैं ना, ध्यान कहाँ है तेरा, ध्यान कहाँ है? तो इसी तरह भगवान भी पूछते ध्यान कहाँ है, ध्यान लगाओ। और देखो शिकायत यही रहती है हमारा ध्यान लगता नहीं है ईश्वर में। यही तरीका यहाँ से सीखना है, ध्यान लगाने के लिए टेलीपैथिक कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, मन का कनेक्शन। और इसीलिए कहा गया है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो मन और बुद्धि को जोड़ना जरूरी है, उसी को ही ध्यान कहा गया, उसी को ही मेडिटेशन कहा जाता है, और उसी को ही फोकस कहा जाता है। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिया, उसी को ही आध्यात्मिक भाषा में योग कहा जाता है। क्या आप अपने बुद्धि का योग ईश्वर के साथ जोड़ो, जिसको गीता में कहा मन मना भव, हे अर्जुन तू मन मेरे में लगा, और जितना मन को लगाएंगे अर्थात चिंतन को एक दिशा देना, चिंतन को दिशा देने से दशा परिवर्तन होने लगती है, जीवन की दशा परिवर्तित हो जाती है। तो इसीलिए चिंतन के माध्यम से आप किसी व्यक्ति को याद करो और थोड़ी देर में उसका फोन आ जाता है तो क्या कहते हैं, अरे अभी आपको ही याद कर रहे थे। उस व्यक्ति से पूछो भाई कैसे फोन कर ले, कहेंगे ऐसे ही बस तेरी याद आ गई, हमने याद किया और उसका रिस्पांस मिला। लेकिन कैसे, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, एक ही वेवलेंथ थी तो मैच हो गई, आपने याद किया उसने रिस्पांस दिया। इंसान के साथ अगर ये हो सकता है टेलीपैथिक कनेक्शन, सोचो आप ईश्वर को याद करो और उसका रिस्पांस अनुभव हो तो कितनी खुशी होगी। यही तो मेडिटेशन है, आप दिल से याद करो उसको, और जब दिल से और सुबह सुबह याद करो, सुबह सुबह इसलिए कहती हूँ कि सुबह सुबह दुनिया सोई होती है तो कारोबार नहीं होता है। दिन में याद करने बैठे ना उसके साथ 10 कारोबार की बातें भी याद आएगी तो कनेक्शन लूज होता है, तो बैटरी चार्ज नहीं होती। लेकिन सुबह सुबह जैसे किसी व्यक्ति को आप बार बार फोन पर कांटेक्ट करने का प्रयत्न, सारा दिन एंगेज मिलता है तो क्या कहते हैं, सुबह सुबह पकड़ो उसको, सुबह मिल जाएगी लाइन उसकी क्लियर, और सुबह सुबह लाइन मिल जाती है बात हो जाती। तो इसी तरह भगवान के साथ भी दिन भर में थोड़ा वो भी व्यस्त होता है, कभी भक्तों के पास जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, तो उसकी लाइन भी एंगेज मिलती है। इसीलिए जो है सुबह सुबह अमृत वेले, आज कितने लोग आए थे अमृत वेले, अच्छा लगा मेडिटेशन, अच्छा लगा, सुबह सुबह बैठो कनेक्ट करो, क्योंकि दुनिया सोई है, कारोबार नहीं है, मन को भी एकदम मन फ्री है, सहज लग जाता है उसके साथ। और जैसे ईश्वर के साथ लगा मन कि उसकी ऊर्जा भी प्राप्त होने लगती है और बैटरी चार्ज होने लगती है, ऐसी चार्ज हो जाएंगी सुबह सुबह चार्ज कर लो तो कि सारा दिन वो चलती रहेगी। कई लोग पूछते हैं कितना समय मेडिटेशन में बैठना होता है, सुबह कम से कम 20 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट, ब्रेन की कैपेसिटी इतनी है एकाग्रता के लिए, इसलिए मैक्सिमम 45 मिनट और कम से कम 20 मिनट। कर सकेंगे, कर सके, यहाँ से जाने के बाद कर पाएंगे सुबह सुबह 4 बजे 20 मिनट खाली। क्यों कहा मैंने 20 मिनट, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर गुस्सा आता है ना, 5 मिनट बॉइलिंग टेम्पर एंगर गुस्सा आता है ना, तो कहा जाता है उसकी 2 घंटे की कार्यक्षमता डिस्चार्ज हो जाती है, 2 घंटे की कार्यक्षमता जल जाती है गुस्से के कारण। 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है, तो 20 मिनट गुस्सा किया तो 8 घंटे की कार्य, आपने देखा होगा जिस दिन सुबह सुबह किसी ने गुस्सा दिला दिया आपको और बहुत जोर का गुस्सा आ गया, और वो दिन कैसा जाता है, इतना बेकार जाता है, कोई काम नहीं होता है, कहीं पर भी सफलता नहीं मिलती, और क्या कहते हैं, आज का दिन बहुत बेकार गया, दिन खराब कर दिया उसने, कोई काम नहीं हुआ, कोई क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हुआ, सारा दिन वेस्ट गया, है ना अनुभव। 5 मिनट का गुस्सा 2 घंटे की कार्य क्षमता को जलाता है, 20 मिनट का गुस्सा 8 घंटे की कार्यक्षमता को जला देता है, तो 5 मिनट का मेडिटेशन क्या करेगा? 2 घंटे की बैटरी चार्ज कर देगा। और 20 मिनट मेडिटेशन किया तो 8 घंटे की बैटरी चार्ज। ये नहीं कि बातें नहीं आएंगी, परिस्थिति नहीं आएंगी, समस्या नहीं आएगी, लेकिन यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू हैंडल इट। आप में इतनी क्षमता आ जाएगी, उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकेंगे और सफलता मिलेगी। तो मेडिटेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो सुबह 20 मिनट और शाम को पुनः 20 मिनट, जो सारा दिन बैटरी यूज कर दी, शाम को फिर से एक बार 20 मिनट चार्जिंग कर लो तो नींद अच्छी आएगी। सोने से पहले फिर से एक बार, लोग रात को ही मोबाइल चार्ज करते हैं ताकि सुबह काम कर सकते, तो रात को नींद अच्छी आएगी, पीसफुल, उस हैंगओवर को लेकर के नहीं सो, नींद भी नहीं आएंगी, परेशान रहेंगे, रात भर उलट पुलट होते रहेंगे, उससे तो अच्छा है 20 मिनट मेडिटेशन करो, ध्यान करो, एकाग्र और सो जाओ, बहुत अच्छी नींद आएगी। मंजूर? हाँ, चलो तो थोड़ी देर मेडिटेशन करें। तो कुछ क्षण के लिए ये टेलीपैथिक कनेक्शन हम इस ईश्वर के साथ जोड़ते, आत्मचिंतन ये पहला कदम है, और उस आत्मचिंतन से परमात्म चिंतन की ओर। स्वस्थ होकर के बैठे, पीठ सीधी हो, एकदम अलर्ट हो, क्योंकि मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, राजयोग होना चाहिए, राजा बन करके बैठो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो, निद्रा योग में नहीं जाना है, ठीक है ना। तो इसीलिए स्वस्थ होकर के बैठेंगे कुछ क्षण के लिए, अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, स्वयं को आत्मनिश्चय करते हैं, अंतर चक्षु से स्वयं को देखो, त्रिकुटी के मध्य में एक चैतन्य शक्ति प्रकाश पुंज के रूप में, ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा इस देह की कर्मेंद्रिय के मालिक अधिकारी हूं, महसूस करो मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र, यही मेरी वास्तविकता है। प्रकाश पुंज चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल है, उस दिव्य प्रकाश में मैं आत्मा ज्योति पुंज के रूप में स्वयं को देख रही, कितना सुंदर दिव्य स्वरूप है ये। मैं आत्मा अपने गुण धर्म में स्थित, मेरा गुण धर्म शांति, मेरे मन के विचार शांत होते जा रहे हैं, चारों ओर शांति के प्रकंपन महसूस कर रही हूं। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है, परमानंद है। अपने चारों ओर इस ऊर्जा को प्रवाहित होने देती हूं। वातावरण में, प्रकृति में, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, शक्ति पुंज, यही मेरी वास्तविकता है। मैं शांत हूं, शुद्ध हूं, शक्ति स्वरूप। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को ईश्वर के सानिध्य में ले चलते, अंतर चक्षु से ईश्वर के उस दिव्य स्वरूप को देख रहे, मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व शक्तियों की किरणें मैं स्वयं में समाती जा रही हूं। और धीरे धीरे मैं आत्मा सशक्त हो रही, ओम शांति शांति शांति।